अस्सलामुअलैकुम। आज पीर है फरवरी की 20 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पीर को यूक्रेन का गैर एलानिया दौरा किया है, जो कि रूस के हमले का 1 साल मुकम्मल होने से कुछ दिन पहले हुआ है। बाइडन का कहना था कि वो इस मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत के इजहार के लिए यहाँ आए हैं। कीएफ में मार्कनेसी पैलेस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ खिताब करते हुए बाइडन ने नई अमरीकी इमदाद में $500 मिलियन के इजाफे का ऐलान किया, जिसमें तोपखाना, गोला बारूद और टैंक शिकन हथियार शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस हफ्ते रूस के खिलाफ नई अमरीकी पाबंदियां आयद की जाएंगी। बाइडन ने इस मौके पर कहा कि 1 साल बाद कीव डटा हुआ है और यूक्रेन पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि अमरीकी आपके साथ हैं और दुनिया आपके साथ खड़ी है। बाइडन ने कहा कि पुटिन का ख्याल था कि यूक्रेन कमज़ोर है और मगरब तकसीम है। उन्होंने सोचा था कि वो हमसे आगे निकल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब भी ऐसा सोच रहे होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा तारीखी लम्हा है। उन्होंने बाइडन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अमरीकी रहनुमा के साथ मैदान जंग की सूरत हाल पर बात करने के मुंतजर हैं। बाइडन और ज़ेलेंस्की जिस वक्त दारुलहुकूमत में एक कैथीड्रल का दौरा कर रहे थे, तो कीव और यूक्रेन के दीगर मकामात पर फजाई हमले के सायरन सुनाई दिए। बाइडन और ज़ेलेंस्की ने एक यादगारी दीवार पर भी फूल चढ़ाए, जो तनाजे से गिरने वाले हीरोज के लिए वक्फ है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडन इंतजामिया तुर्की को F-16 लड़ाका तैयारों की फरोख्त की हिमायत करती है। वाजपीर को अनकरा के दौरे के दौरान तुर्क लीडरों से बातचीत कर रहे थे। ब्लिंकन का कहना था कि अमरीकी कांग्रेस को 20 बिलियन डॉलर की F-16 फरोख्त की मंजूरी देनी चाहिए, जिसमें 40 जेट तैयारों और तकरीबन 80 जदीद कारी किट्स के लिए तुर्की की दरख्वास्त शामिल है। ब्लिंकन ने तुर्क वजीर खारजा मौलूद शावजोगलू के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो मुजवजा फरोख्त के बारे में कांग्रेस को बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तला करने के बारे में कोई टाइमलाइन फराहम नहीं कर सकते, लेकिन ये कि वो इस माहदे के लिए बाइडन इंतजामिया की हिमायत का इजहार कर रहे हैं। वो तुर्क सदर रजब तैयब अर्दबान से भी मुलाकात करने वाले हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मसरूफ तरीन सरहदी गुजरगाह तोरखम पर दोनों ममालिक के दरमियान आमदरफ्त और दोतरफा तजारत का सिलसिला सोमवार के रोज दूसरे दिन भी मुअत्तल रहा। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक दोनों जानिब से सरहदी गुजरगाह के करीब सिक्योरिटी एहलकारों के मजीद दस्ते तैनात किए गए हैं। ताहम फायरिंग का सिलसिला रुका हुआ है, मगर फिर भी कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। सोमवार की सुबह दोनों ममालिक के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ था। फायरिंग के तबादले के नतीजे में सरहद के दोनों जानिब सख्त कशीदगी पैदा हुई और तमाम तर तजारती, कारोबारी और सरगर्मियां मुतासिर हुईं। ताहम लगभग 2 घंटों के बाद फायरिंग का तबादला बंद हुआ। सरहदी गुजरगाह पर वाकई गेट को तालिबान अहदेदारों ने इतवार की शाम उस वक्त बंद कर दिया जब पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों ने बगैर दस्तावेजात के उन अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान दाखिल होने से रोकने की कोशिश की जो अपने रिश्तेदार मरीजों के साथ थे। लगभग 10 दिन कबल पाकिस्तानी हुकाम ने मरीजों के साथ आने वाले उनके रिश्तेदारों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने पर पाबंदी आयद की। अफगानिस्तान में बरसर इख्तदार तालिबान ने पाकिस्तान के इस फैसले पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया। तुरखम में काम करने वाले मजदूरों और ताजिरों ने सफ़ेद झंडे हाथों में उठाकर अमन मार्च भी किया और दोनों ममालिक के आला हुकाम से मसाइल और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए मुज़ाकरात की अपील की। सरकारी तौर पर तोरखम में दो दिन से जारी कशीदगी के बारे में किसी किस्म का बयान जारी नहीं किया गया। रिहायशियों और ऐन शाहिदीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तोरखम में पाकिस्तानी अफवाज और तालिबान के दरमियान सुबह 7 से 8 बजे तक के दरमियान छोटे और भारी हथियारों से फायरिंग का तबादला हुआ। निंगरहार में तालिबान की सूबाई हुकूमत ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि तोरखम बॉर्डर आइंदा इतला तक हर किस्म के कारोबार और मुसाफिरों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। सूबाई हुकूमत ने आवाम से कहा है कि वो अगले नोटिस तक तोरखम के सफर से गुरेज करें। बयान में तोरखम बॉर्डर के कमिश्नर मौलवी सिद्दीक के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने वादे पूरे नहीं किए और तालिबान क्यादत के हुक्म पर गेट बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन एक्ट सन 2017 के सेक्शन 57 का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान किया। ऐवान सदर से जारी बयान में कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह बाद 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। सूबाई असम्बली के लिए तारीखें मुकर्रर करने के एलामिया में 7 निकात हैं जिनमें यह भी कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। दोनों सूबों में असम्बलियां तहलील होने के बाद आईन के मुताबिक आम इंतखाबात में 90 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि दोनों सूबों में इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और कमीशन भी अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। उनके मुताबिक दोनों आईनी दफ्तर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं जिसकी वजह से आईनी अमल की तकमील में ताखीर हो रही है। सदर अलवी का कहना था कि उन्होंने हलफ लिया है कि वो आईन की पासदारी और हिफाजत करेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने मंगल को हंगामी इजलास तलब कर लिया है जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह खान ने कहा था कि सदर ममलुकत इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी और गैर आईनी अहकाम पर मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए वो आईन की हद में रहें और अपने दफ्तर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा न बनाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर जुमे को होने वाले दहशतगर्द हमले के सहूलतकारों का पीछा करने का अजम जाहिर किया है। इस हमले में 5 अफराद हलाक हुए थे और 3 हमला आवर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारे गए थे। सिंध असम्बली में पीर को खिताब करते हुए वजीर आला सिंध का कहना था कि इस हमले ने उन्हें हिला कर रख दिया है और हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे अमन व अमान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। गो के पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जुमे को होने वाले हमले की बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है लेकिन 2 रोज में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। कराची पुलिस के एक सीनियर अफसर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हमलावरों में से 2 की शनाख्त हो चुकी है जबकि 3रे की शनाख्त की जा रही है। सिक्योरिटी तजियाकारों का कहना है कि कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला सिक्योरिटी की नाकामी से ज्यादा इंटेलिजेंस की नाकामी थी और दहशतगर्दों का मकसद ये पैगाम देना था कि वो कहीं भी बाआसानी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पीर के रोज कारोबार के अख्तिताम पर 457 पॉइंट्स की बड़ी कमी देखी गई जिसकी वजह अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल को तजियाकार करार देते हैं। तालिबान की वजारत खारजा ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरमन अफगानिस्तान को नागुजीर करार दिया था। वजारत का कहना था कि हम इलाकाई और आलमी ममालिक की तवज्जो इस हकीकत की तरफ मबसूल कराना चाहते हैं कि तालिबान हुकूमत ने कब्जे के दौरान और इख्तदार में आने के बाद अफगानिस्तान और खित्ते की सलामती को मजबूत बनाने के लिए ठोस इकदाम किए हैं जिसके नतीजे में न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते की सलामती में बेहतरी आई है। तालिबान हुकूमत की वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि वजारत खजाना ने गुज़श्ता 11 माह में अफगानिस्तान में कस्टम कीमत में 100 अरब अफगानी रकम जमा की है। वजारत का कहना है कि साबिक दौरे हुकूमत में एक साल में 72 अरब अफगानी जमा हुए थे, जो एक बड़ी रकम थी। तजियाकारों का कहना है कि गुज़श्ता 11 माह में महसूलात और टैक्सों की वसूली में इजाफे में पाकिस्तान को कोयले की बरामद का अहम अंसर भी शामिल था। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने नामा निगारों को बताया है कि अमरीका और चीन के ताल्लुकात में जो कशीदगी पैदा होगी, उसका इजहार उन्होंने बराह रास्त चीनी खारजा पॉलिसी के आला अहदेदार वांग यी के साथ कर दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेन बिन ने पीर को एक ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका चीन पर दबाव डालने की पोजिशन में नहीं है और चीन के रूस के साथ ताल्लुकात किसी तीसरे फरीक को निशाना बनाने के लिए किसी सफबंदी और अदम तसादुम पर मबनी नहीं है। वांग वी बिन ने कहा कि यह अमरीका है न कि चीन, जो लामतनाही तौर पर मैदान जंग में हथियार भेज रहा है। यूरोप यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा जोसेफ बोरेल ने ब्रसल्स में सहाफियों को बताया कि उन्होंने भी वांग यी के साथ मौजूदा सूरत हाल पर बात की है और उनसे कहा है कि वो रूस को हथियार फराहम न करें। बोरेल ने कहा कि इस तरह की चीनी इमदाद हमारे ताल्लुकात में सुर्ख लकीर होगी। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा के इजलास से पहले ये बात कही और कहा कि यूक्रेन की सबसे फौरी ज़रूरत गोला बारूद है। बोरेल ने कहा कि वज़रा इस बात पर तबादला ख्याल करेंगे कि किस तरह यूक्रेन की अफवाज को ज़्यादा तेज़ी से असलहा, खास तौर पर गोला बारूद फराहम किया जाए। शिमाली कोरिया ने पीर की सुबह मुख्तसर फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिनके बारे में उसने फौरी तौर पर वाजह कर दिया कि ये अमरीका के जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फजाई मशकों का जवाब है, जिसमें B-1B स्ट्रेटेजिक बमबारों और F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल किया गया था। शिमाली कोरिया ने बयान में फख्रिया कहा कि रॉकेटों के सिर्फ 4 राउंड्स फायर किए गए हैं, जिनकी खसूसियत यह है कि ये एक टैक्टिकल जौहरी हथियार हैं जो एक हवाई अड्डे को तबाह कर सकते हैं। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उसने शिमाली कोरिया के दारुलहुकूमत प्योंगयांग के शिमाल में वाक़ इलाके सैकचून से सुबह 7 बजे से सुबह 11:30 के दरमियान दागे गए मुख्तसर फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का जजीरनुमा कोरिया के मशरक में पता लगाया है। ईरान ने पीर के रोज़ इन खबरों की तरदीद की है कि वो इतनी मकदार में यूरेनियम अफसूदा कर रहा है कि हथियार बना सके। सरकारी इरना न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान बहरोज कमालवंदी ने पीर को कहा कि अब तक हमने 60% से ज़्यादा अफजूदगी की कोई कोशिश नहीं की है। 60% से ज़्यादा अफजूदगी के ज़र्रात की मौजूदगी का मतलब ये नहीं है कि हथियार तैयार किए जा सकते हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज़ की इतवार को एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बैन अलावी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों ने 84% तक फजूदा यूरेनियम का पता लगाया है। जौहरी बम तैयार करने के लिए यूरेनियम को 90% तक अफजूदा करना ज़रूरी है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने पीर को तुर्की के दौरे के दौरान सहाफियों को बताया कि अमरीका IAEA के साथ करीबी रबते में है और सूरत हाल के बारे में मजूद मालूमात हासिल करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत संगीन मामला होगा। IAEA ने इतवार को एक ट्वीट में कहा था कि वो ईरान की अफजूदगी की सतह से मुतालिक रिपोर्ट से आगाह है। डॉक्टर ग्रॉसी का कहना था कि IAEA ईरान के साथ एजेंसी की हालिया तस्दीकी सरगर्मियों के नतायज के बारे में बात कर रही है और वो IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मुनासिब तौर पर आगाह करेगा। ब्राज़ील में तूफानी बारिशों के नतीजे में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 36 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़्यादातर नुकसान ब्राज़ील की रियासत साओ पाउलो में हुए हैं, जहां लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों घर तबाह हो गए हैं और कई मरकजी शाहराएं सैलाबी पानी में डूबी हुई हैं। हुकाम ने हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। इमदादी कामों में फायर फाइटर्स के साथ ब्राज़ील की फ़ौज के अहलकार भी हिस्सा ले रहे हैं। ट्विटर के बाद अब फेसबुक और इंस्टाग्राम सारिफिन भी मुआवजा अदा करके ब्लू टिक हासिल कर सकेंगे। मेटा ने ऐलान किया है कि वो जल्द अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए पेड सर्विस का आगाज करेगी। सर्विस के तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम पर موجود 18 یا اس سے زائد عمر کے صارفین کمپنی کو ادائیگی کر کے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کرا سکیں گے، لیکن یہ سروس بزنس اکاؤنٹس کے لیے دستیاب نہیں ہوگی۔ بلو بیج حاصل کرنے کے لیے صارفین کو ماہانہ $12 ادا کرنے ہوں گے، لیکن وہ اکاؤنٹس جو پہلے ہی تصدیق شدہ ہیں ان پر یہ چارجز لاگو نہیں ہوں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں اور دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔